हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने रूहान के गीले बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहा, शायद आपको एंगर इश्यूज हो गए हैं, हम इनको जल्दी ठीक कर लेंगे। मुझे लगता है हम दोनों को वेकेशन पर जाना चाहिए। ये सुनकर रूहान ने तुरंत ही एक्साइटेड होकर कहा, क्या हम लोग हनीमून ट्रिप पर जा सकते हैं मैडम जी? रोते रोते भी अनाही को रूहान की इस बात पर हंसी आ गई और उसने धीरे से हाँ बोलते हुए कहा, ऑफ कोर्स जा सकते हैं, मुझे लगता है यही राइट टाइम है कि हमें अपना हनीमून सेलिब्रेट कर लेना चाहिए और कुछ दिनों के लिए कम से कम छुट्टी ले लेनी चाहिए। अनाही की हाँ सुनकर तो रूहान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने और भी ज्यादा कसकर अनाही को गले लगाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तो अब आपको रोने की जरूरत नहीं है ना, सब कुछ ठीक हो चुका है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रूहान की बात सुनकर अनाही ने अपने मन में कहा, पर मुझे अपने आप से बहुत शिकायत है, मैं कैसे आपके साथ ऐसा कर सकती हूँ, बहुत ही बुरी लड़की हूँ। इतना बोलकर अनाही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी, जिसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर रूहान की चेस्ट पर गिरने लगे, जिन्हें महसूस कर रूहान ने अपना गला करते हुए कहा, क्या हुआ मैडम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज रोना बंद करिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर उसने अनाही को खुद से अलग किया और इस बार उसके होठों को अपने होठों में कैद करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो बिना रुके लगातार अनाही के होठों पर किस कर रहा था। वहीं अनाही को अब रोने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो रूहान के किस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही अनाही की सांस उखड़ने लगी थी, जिससे वो रूहान को हल्का सा खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर रूहान ने उसके हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसे खुद के और भी करीब करते हुए बेसब्री से उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद जब रूहान को लगा कि अब अनाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो उसने आहिस्ता से उसके होठों को छोड़ दिया, जिसके साथ ही अनाही हाँफती हुई उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, क्या आपको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है? ये बोलते वक्त अनाही की सांस एक बुरी तरह उखड़ रही थी, उसका छोटा सा चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। रूहान ने हल्के से मुस्कुराकर फिर से उसके होठों को चूमते हुए कहा, मुझे लगता है जब तक आप मेरे करीब हैं, मुझे बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। अनाही ने हैरानी से आंखें उठाकर रूहान की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए बेहद तड़प दिखाई दे रही थी। अनाही फिर ऐसा होते हुए उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे लगता है आपको कपड़े पहन लेने चाहिए, हम घर पर नहीं हैं, ऑफिस के अंदर हैं। रूहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या घर के अंदर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप घर के अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ कहकर खुद से दूर कर देती हैं। अनाही अब उसकी गोद से उठ चुकी थी। उसने शर्माते हुए अपने चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे करते हुए कहा कि मैं आपके घर जाकर ही बताऊंगी, आप कपड़े पहन लीजिए, हम घर चलते हैं, वैसे भी आज शाम को पार्टी है ना, तो हमको जल्दी पहुंचना है, मैं जाती हूँ, आप आ जाना। इतना बोलकर अनाही लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर जाने लगी। उसे ऐसे शर्माते हुए ज्यादा देखकर रूहान के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये जानकर कि वो सच में अपनी मैडम जी का मूड अच्छा कर सकता है। उसे थोड़ा बहुत खुद पर विश्वास होने लगा था, पर ना तो उसे लगता था कि वो कभी किसी का मूड ठीक नहीं कर सकता है, उसे रोते हुए कुछ चुप करवाना नहीं आता है। शाम के वक्त वेदांत, अनाही और रूहान तीनों घर आ चुके थे और अब सब लोग तैयार हो रहे थे, क्योंकि नीचे मेहमान आ चुके थे, वो नए साल की पार्टी कर रहे थे। अनाही ने पर्पल कलर का एक गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। रूहान ने भी पर्पल कलर का बिजनेस सूट पहना था, जिस पर थोड़ा ग्लिटर वर्क था और वो बेहद हैंडसम लग रहा था। रूहान धीमे कदमों से चलकर मिरर के पास आता है, जहां अनाही अपने गाउन के पीछे की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे स्ट्रगल करता देख रूहान उसके पास आया और आहिस्ता से उसकी कमर पर वो डोरी बांधते हुए बोला, मैडम जी, जब आपसे कोई काम नहीं होता है तो आप मुझे बुला सकती हैं, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा। उसके ठंडे हाथों को अपनी खुली पीठ पर महसूस करके अनाही की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसने आहिस्ता से अपनी सिसकियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, आप अपना फायदा ढूंढने के लिए ये सब बोल रहे हैं ना? रूहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आपने तो मुझे कहा है कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है। अब मैं जब भी अपने बारे में सोचूंगा, मेरे दिल में एक ही ख्याल आएगा कि मैं कैसे भी करके कैसे मैडम जी के पास पहुंच सकता हूं। उसके साथ पर अनाही ने हल्के से मुस्कुराकर आंखें उठाकर रूहान की तरफ देखा और उसने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में पल भर के लिए हल्का गुस्सा उतरा। उसे गुस्से को देखकर रूहान ने एक झटके से उसे अपनी तरफ किया और अगले ही पल उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, क्या हुआ मैडम जी,
अब क्या देखकर आपका मुंह बना है? क्या मैंने कुछ गलत बोला है? अनाही ने उसके गले में बाहें डालते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अब मुझे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा है। वो कैसे आपको अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोल सकती है? और आज आप और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इसका मतलब है, हो सकता है पार्टी में भी आप पर लड़कियां लाइन मारे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना बोलकर अनाही ने मुंह बनाया तो रूहान ने झुकते हुए उसके गुस्से से लाल गाल को चूमते हुए कहा, पर आपका पति तो बहुत लॉयल है, वो तो किसी को हाँ नहीं बोलेगा ना, तो आपको ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रूहान फिर से अनाही की आंखों में देखने लगा। अनाही ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको मेरी आंखों में इनसिक्योरिटी नजर आ रही है? रूहान ने नामे सिर हिलाया और उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर अनाही के होठों पर भी स्माइल आ गई। फिर अनाही ने अपने मन में कहा, उस लड़की से तो मैं अलग से बदला लूंगे इसके लिए। दूसरी तरफ वेदांत विहा को साड़ी पहना रहा था। उसने पीच कलर की साड़ी पहनी थी और अब वो कमर पर हाथ रखकर मिरर में खुद को देख रही थी। वेदांत उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी साड़ी की प्लेट्स बना रहा था। साड़ी का एक कोना उसके मुंह में था और दूसरे से वो अपने दोनों हाथों से प्लेट्स रेडी कर रहा था। विहा ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, और कितना वक्त लगेगा पतिदेव, मैं थक गई हूँ खड़े खड़े। वेदांत ने अपने मुंह से साड़ी के पल्लू को निकालते हुए हल्के गुस्से में कहा, टोमेटो, थकना तो मुझे चाहिए, पिछले आधे घंटे से तुम्हें तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। विहा ने रोनी सूरत बनाकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने जल्दी से उठकर उसकी कमर में साड़ी की प्लेट्स डालते हुए प्यार से उसके गाल को चूम कर कहा, अरे रोना नहीं, बस बच्चा, थोड़ी देर और फिर तुम बिल्कुल रेडी हो जाओगी। ये सुनकर विहा के होठों पर स्माइल आ गई। इसके बाद वेदांत ने उसके कंधे पर पल्लू डालते हुए वहां एक पिन लगाई और फिर मिरर में उसे देखकर उसके कंधे पर अपना सिर रखा और उसके कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए बोला, अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी टोमेटो। विहा ने घूमकर वेदांत के गाल को चूमते हुए कहा, हाँ सच में आप धीरे धीरे एक बहुत अच्छे पति बनते जा रहे हैं जो अपनी पत्नी का ख्याल रखने में सक्सेसफुल हो रहा है, और अब आप एक अच्छा ब्यूटी पार्लर भी खोल सकते हैं, अब आपको सारा काम आने लगा है।
विहा की इस बात पर वेदांत ने हंसते हुए कहा, इस तरह तो मुझे बावर्ची भी बन जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सारा खाना बनाना भी आने लग गया है, और आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तुम्हें पार्टी का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से सब कुछ रेडी कर लिया है। ये सुनकर विहा और भी ज्यादा खुश हो गई, और उसके बाद वेदांत खुद भी रेडी होने लगा, क्योंकि आधे घंटे में पार्टी स्टार्ट होने वाली थी और उन दोनों को लेट नहीं होना था। वैसे भी माधवी तो मौका ढूंढते रहती है विहा को सनाने के लिए, और वेदांत माधवी को अब कोई मौका नहीं देना चाहता था। हेलो रीडर, किसी ने कमेंट किया कि कहानी को लंबा ना खींचा जाए और खत्म कर दिया जाए, इस बात से और कौन कौन सहमत है? दूसरा, एक मैसेज यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, इस कहानी के 20 पार्ट्स एक साथ अपलोड होते हैं जिन्हें लिखने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाता है। आपको अगर रेगुलर स्टोरी चाहिए तो आप स्टोरी मेनिया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।